قسم کے بعد قسم کا جواب کیا ہے؟ مانت بنعمت ربک بھی مجنون، نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے تو ایک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. دوسری بات. اور تیسری، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ تو اخلاق کے بڑے اعلیٰ مرتبوں پر ہیں. دیکھیے گا، قسم کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، آگے بھی کچھ باتیں آئیں گی، لیکن یہ تین باتوں کو ہم ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت آئی تو رات دن آپ کو ایک ہی دھن لگ گئی تھی کہ میرے پاس جبرائیل آئیں اور میں اس چاشنی کو محسوس کروں جو پہلی وحی کے نازل ہوتے ہوئے تھی. آپ مس کرتے تھے، جب پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی نہ آئی، فترۃ الوحی کہتے ہیں کچھ لوگ، تو آپ پہاڑوں میں نکل جاتے. بعض دفعہ ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ پہ سے ڈال کر نیچے گرا دوں، میں مس کرتا ہوں. یہ آپ میں سے ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ جب کلاس مس ہوتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے. سنتے سنتے اگر کچھ دن سن ہو جائیں اور نہ سنیں تو جو کیفیت ہوتی ہے اس کو محسوس کر لیں. آپ کو ایسے فیل ہوتا تھا کہ بس یہ میرے اوپر ہے. خیر، اس کے بعد سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، وہی آنے لگ گئی. اب جب وہی پہ وہی آنے لگی تو پھر اس پہ عمل کرنے کو دل کرتا تھا. وہی کے تقاضے نبھانے میں بعض دفعہ معاشرے اور وقت کے رواج کو نہیں دیکھنا پڑتا تھا، تو لوگوں نے آپ کو مجنوں کہنا شروع کر دیا. ہی بیکم کریزی، اٹ گون کریزی. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، جب قرآن کی دولت آپ کو ملتی ہے نا، آپ کا اندر تو شکر کے سجدے پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں جیسے ایک کشتی کو کنارہ مل گیا، ڈوبتا ہوا شخص اس کو لنگر مل گیا، لیکن لوگ آپ کو مجنوں کہنے لگتے ہیں. کہتے ہیں تو پاگل ہو گئی ہیں، کرینکی ہو گئی ہیں، فنیٹک ہو گئی ہیں، ان کو تو بس ایک ہی دھن ہے، کلاس کلاس کلاس، قرآن قرآن قرآن. کیا ہم نہیں پڑھتے تھے؟ دیکھو قربانیاں، شوہروں کی بات نہیں مانتی، شوہر کچھ کہتے ہیں یہ کچھ کہتے ہیں، بس ان کو تو ایک دھن سوار ہے. تو یاد رکھیے، یہ اس تانے سے گزرنا ہی پڑتا ہے. جو دین کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے نا سیکھنے کے لیے، جیسے آج کل آپ کی لگی ہوئی ہے، پھر بعد میں سکھانے اور اس میں مدد کرنے میں، لوگ بعض دفعہ اس کو دیوانگی کہتے ہیں، پاگل پن کہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پاگل پن کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں کر رہے ہوتے یہ کام، اور جو کام بہت سارے نہ کریں تو کوئی ایک کرے تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے، آکورڈ لگتا ہے، رواج نہیں بنا ہوتا. پھر دوسری بات یہ کہ اس راستے میں کئی جگہ ذاتی آرام اور فائدے کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس کے اندر انسان جب پڑتا ہے دوسروں کو لگتا ہے کہ یہ اپنا ہر نفع چھوڑ رہے ہیں. مثلا آپ ابو بکر صدیق کی دوڑ دھوپ دیکھے نا، ایک طرف جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لوگ ان کے پیچھے ہیں، اور ابو بکر چپکے چپکے تیاریاں کر رہے ہیں کہ جس وقت بھی حکم ہو گیا ہجرت کا تو میں فوراً اللہ کے نبی کو لے کے نکل جاؤں گا. آپ نے اپنی اونٹنیاں بھی تیار کر دی، عامر بن فخیرہ کو بھی کہہ دیا، بچوں کو بھی ذہنی طور پہ تیار کیا. تو بعض دفعہ ہماری دین کے لیے باتیں، کوششیں، میٹنگ، ادھر جانا ادھر جانا، یہ قربانی وہ، یہ دوسرے لوگوں کو دیوانگی لگتی ہے. اور آپ یہ بھی بات نوٹ کیجئے کہ قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے؟ کہ آپ اپنے رب کے فضل سے، یہاں لفظ بھی نعمہ کو اوور لک نہ کیجئے گا، یہ دیوانگی اللہ کی نعمت ہے. یہ مبارک ایسے، ایک تو پاگل پنا، پاگل ہو گیا کوئی، مینٹل کیس ہو گیا، وہ تو واقعی قابل ترس ہے. جس کو اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے پھیلانے، اللہ کی مخلوق کو ابدی خطرے اور غم سے بچانے کی دھن لگ گئی نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس کو لگ گئی ہے وہ اس پہ شکر ادا کرے. ہر ایک کو نہیں لگتی. قرآن پڑھ کے ضروری نہیں کہ آپ مجنوں ہو جائیں. بڑے ہوش بوش میں لوگ رہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جو عمل والی چیز ہوگی وہی عمل کریں گے، جس پہ میری زندگی بس ٹھیک ہے، جو میری زندگی کے سکیلٹن میں فٹ ہوا بس وہ حکم لوں گی. سارے تھوڑی لوں، میں کوئی کریزی تھوڑی ہوں. اب لو میں بیسٹ میں بیٹھی نقاب کر لوں، میں پاگل ہوں. پڑھ لیا ہم نے سورت حضاب میں، سور پڑھ لی، ٹھیک اٹس فائن، ذرا سوچو اس کے، ذرا پلس مائنس دیکھو، نیگیٹو پازیٹو دیکھو، پھر کروں گی. میں اپنے صاحب کو بھی دیکھوں گی، میرے شوہر ماشاء اللہ کس گریڈ کے آفیسر ہیں، پھر میں عمل کروں گی. یاد رکھیے، جس نے اس قرآن کو سن کر عقل کا ترازو رکھ دیا، جیسے پیچھے بات ہوئی تھی، کبھی مجنون نہیں ہوتا. لوگ اس کو پاگل بھی نہیں کہتے، لوگ پھر پاگلوں کو کہتے ہیں، دیکھو وہ بھی تو قرآن ہی پڑھتا ہے نا، وہ بھی تو پڑھاتے ہیں نا. उनके घरों में सब कुछ होता है, ये आप नहीं कि कुरान पढ़ रही, वो देखिए वो कुरान पढ़ाते हैं, उन्होंने भी तो ये सब कुछ किया हुआ है जो हम करें, हमें किस बात के ताने देते हो। तो कुरान के साथ ताल्लुक जुड़े और आपको मजनू होने का ताना ना मिले तो समथिंग इज रॉन्ग, ये चेंज तो आएगी। और अल्लाह के नबी को सादिक और अमीन कहते थे, अब काहिन और मजनू क्यों कहने लगे कि अल्लाह के नबी नबुवत से पहले मक्का के बेहतरीन इंसान थे। आपकी दयानत अमानत अकल फरासत पर एतमाद करते थे लोग, हल्फे फजूल को देख लीजिए और आपके हाथों हजरे अस्वद की तनसीब का वाकया देख लीजिए, सब मामले सीरत में पड़े हुए। लेकिन जू ही आपके सामने कुरान आया और आपने लोगों के सामने पेश किया, लोग आपको दीवाना कहने लगे। मानी क्या था? वो कहते थे ये कुरान ही असल वो सबब है जिसकी बिना पर आप दीवाने हुए, और कुरान इस तोहमत की तरदीद चाहता था कि इतना प्यारा कलाम जिसको तुम दीवानगी की वजह कहते हो तुम भी ऐसा बना के देख लो। लिहाजा अल्लाह ताला अपने नबी कर डोंट वरी, आप दीवाने नहीं है, मजनू आप नहीं है, आपको वो आखिरत दिख रही है जो इनको नहीं दिखती, असल ये बात है। आप इनकी बातों को सुनकर पीछे हो जाएं, और रह गई बात कि अगर आपका दिल मैला होता है इन बातों पे, क्योंकि हकीकत इंसान होने के नाते जब मुखालफत होती है तो इंसान परेशान होता है, तो अल्लाह अपने नबी को दिलासा दे रहे हैं वइन्ना लकला अजरन गैर ममनून। इतनी खूबसूरत सी आयत है ना, ऐसे लगता है कि एक मिरर है ना तो उसके अंदर फिर एक और मिरर रख दें, कभी आपने देखा होगा फिर उसमें अक्स के अक्स बनते ही जाते हैं। किसी जगह रख कर तजुर्बा कीजिए, जितने वहां की दीवार पे अक्स बन सकते हैं ना उतने ही अक्स उस चीज के बनते हैं। ये अजरन गैर ममनून क्या है? ना खत्म होने वाला अजर, लोगों के ताने खत्म, मसाइब खत्म, इस रास्ते की कुर्बानियां जो दी वो खत्म, इल्जाम लगे तो खत्म, जो सब्र करना पड़ा वो खत्म, जो लोगों ने आप पे बातें की सब खत्म, लेकिन अजर गैर ममनून, एंडलेस डिलाइट, ये अजर कभी खत्म नहीं होगा। और लफ्ज ममनून को देखिए, मन से मीम नून नून, मन कहते हैं बोझ को, ये जो एक मन दो मन तीन मन, किसी का एहसान होता है ना तो इंसान उसके बोझ में दब जाता है। अल्लाह ताला अपने नबी को बताते हैं कि बेहिसाब और लाजवाल अजर है कि आप अल्लाह की मखलूक की हिदायत के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, इसके नतीजे में अल्लाह आपको गैर मखतू, आप लिख लीजिए गैर ममनून का यहां क्या मानी है, गैर मखतू, कभी खत्म नहीं होगा। चलिए आप जरा इसको अपने ऊपर लीजिए, आज उम्मत में जो भी कोई नेकी होती है ये सबसे पहले किसके पलड़े में जाती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं जो बात कहने लगी ना ये बहुत इमोशनल है, अगर आपकी पूरी तवज्जो नहीं होगी तो आप इसको एंजॉय नहीं करेंगे। आपका इस क्लास में आना या ना आना, आप आते हैं इस क्लास में, अजर किसके पलड़े में जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। मन दाल अलल खैर कफाइली, जिसने किसी को नेकी पर उभारा उसको अमल करने वाले का सब सवाब है और उसके अजर में कोई कमी नहीं है। हमारी ये क्लास भी अल्लाह के नबी के अजर में एक इजाफा है। जब छुट्टी करने को दिल चाहे ना तो उस दिन बैठ के सोचिएगा कि आज मैं अल्लाह के नबी के नामे अमाल में कोई अजर नहीं डालना चाहती। और ये बाईपास नहीं होता कि आपसे जैसे कुट करके ऊपर जाके अल्लाह के नबी के पलड़े में डले, जो बंदा या बंदी यहां तक आपके पहुंचने का जरिया बना, जिस टीचर ने आपको उर्दू लिखना सिखाया, जिस माँ ने आपको कुरान सिखाया, जिस टीचर ने आपको अरबी सिखाई, इंटेलेक्ट सिखाई, कितने गैर मखसूस तरीके से हमारी तरबियत हुई तो हम इस जगह पहुंचे ना, इन सब के पलड़े में हमारा अजर है। आप तो उन लोगों को याद भी नहीं रखे होते, बार दफा लोग पढ़ने के बाद अपने टीचर्स के खिलाफ हो जाते हैं, सच्ची बात है, आपको हैरत होगी लेकिन ऐसा होता है, होता आटे में नमक के बराबर, और खास तौर पर जब रूह वाला इल्म नहीं होता, लेकिन उनकी नेकियां पड़ती टीचर्स ही के पलड़े में। बार दफा ऐसे माहौल होते हैं कि मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है, उनके मुकाबले में उनका मदरसा, उनके मुकाबले में उनकी जामिया, जो मर्जी कर लीजिए, आप उनकी चिढ़ में कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप मानते नहीं मानते, अल्लाह ने मेरे और आपके हाथ में नहीं तराजू रखी किसको दो किसको ना दो। अब सोचिए फिर कयामत के दिन अल्लाह के नबी के अजर का क्या हाल होगा। फिर एक छोटा सा एक्सपीरियंस, जब हरम में आप इतने लोगों को देखते हैं, सब दुआएं मांग रहे हैं, सब रो रहे हैं, इलाह देखिए कोई ठीक कर रहा है गलत कर रहा है हमें इससे कोई सरोकार नहीं, दिल तो सबका वहां अच्छा ही होता है। जिस तड़प और तलब से वो लोग वहां आके दुआएं मांगते हैं तो सबके दिल अच्छे। इन सब दुआओं के पीछे आप सोचिए अल्लाह के नबी का हाथ, कितनी प्यारी चीज से अल्लाह ने आपको जोड़ दिया और इसमें बाप का हिस्सा डल गया। अक्सर दुआएं करते हुए इंसान देखता है ना सबको, तो मुझे इतनी लंबी चौड़ी दुआएं आती कोई नहीं है, सच्ची जो बात है, बस कुरान और सुन्नत की जो दुआएं उसी को अपनी चीज़ों को सामने रख के मांगती हूँ। तो कभी कभी मैं अल्लाह ताला से कहती थी कि अल्लाह इस वक्त जितने लोग हरम में दुआएं मांग रहे हैं ना, जो ठीक है, क्योंकि बाद लोगों को पता भी नहीं होता ठीक, जो तेरी नज़र में खूबसूरत दुआएं हैं ना अल्लाह, वो सारी इनकी मेरे हक में भी लगा दे। अल्लाह जिन चीज़ों से ये पनाह मांग रहे हैं, जिन बीमारियों तकलीफों से, ये सब तेरे बंदे ये मांग रहे हैं ना, तो खैर मांग रहे हैं ना, जिस चीज़ में कोई गलत नहीं करे तो मुझे भी उसमें डाल दे। जो ही मैं ये जुमला बोलती थी तो मैं कहती थी अच्छा हरम में इस वक्त कितने, अच्छा इनकी मांगी तो मैं इस पे क्यों महदूद रहूं, तो फिर मुझे फौरन उसके बाद वही दुआ जुबान पे आती थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मा सअलक मिन्हु नबीयुका मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह अल्लाह मैं तुझसे वो सारी दुआएं मांगती जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, और उस हर चीज से पनाह मांगती जिससे आपने पनाह मांगी। तो मुझे ऐसे लगता था बस सब खत्म, कोई और दुआ मांगने की जरूरत नहीं, क्यों कि हमने एक बहुत बड़ी चीज में हिस्सा डाल लिया। इसी तरह आप दुआ में दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इमाम काबा जो दुआएं मांगते हैं अल्लाह उनमें हमारा हिस्सा डाल दे, उम्मत मुस्लिमा के दुआ में हिस्सा डाल दे। और मिलता है, शर्त एक है कि बंदे का अकीदा ठीक हो और नमाजी हो और पेट में हराम ना, वही जो माने हैं ना मवाने, यानी जो बैरियर्स हैं, अगर वो बैरियर होते हैं तो फिर सब की दुआ में आपको मुझे हिस्सा नहीं मिलता। क्योंकि अमूमन हमारे कल्चर में लोग यही कहते हैं अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर रहम कर, अल्लाह सब मुसलमानों को बख्शते कहते हैं, तो क्या सारे बख्शे जाएंगे? नहीं बख्शे जाएंगे। अल्लाह उनकी दुआओं को लाके टटोलेगा, लाएगा हमारे अमल पे। अगर हमारे अंदर वो एबिलिटीज होंगी तो अल्लाह दे सकता है। पीछे भी बात की थी ना सूरह जुमर और सूरह हामीम में भी गालिबन फरिश्तों की दुआएं जो लगती हैं वो करते सबके लिए हैं, लगती सही अल अकीदा और सही अल अमल लोगों को है। तो लिहाजा इस अजर की कोशिश करें। आखिरी बात करके आगे चलती हूँ, क्या मैं और आप नहीं चाहते? अभी शायद को जरा अपने ऊपर लेके पढ़े, वह इन नकल आला खुलुक नजीब का की जमीर अपने ऊपर ले आए। कल क्यामत के दिन वो क्या वक्त होगा जब अल्लाह आपको कह देगा कह बंदी तेरे लिए बड़ा ही अजर है। हो सकता है जिंदगी में इंसान ने कभी 1000 गज कपड़ा ना देखा हो और वहां 1000 गज आपके नाम पे लिखा हुआ, आपने सदका किया। ये कहां से हो गया? आपने रगबत दिलाई थी, 1 गज तो आपने सदका दिया था, बाकी 999 आपके कहने पे लोगों ने कर दिए थे। क्या हमें खामोश रहना चाहिए? हर वक्त बंदा दाइये दीन बन जाए अगर उसको इस बात का यकीन आ जाए कि मैं खुद तो नहीं कर सकता या कोई काम एक हद से ज्यादा नहीं कर सकता, अल्लाह सुबहान तआला आप मेरे कहने पे दूसरे से करवा लें। मैं अक्सर एक जुमला लोगों को बोलती हूँ, मैं कहती हूँ जरूरी नहीं कि आप मुझसे पढ़ें, बस एक रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे कहने पर पढ़ लें, मेरे कहने पे कुरान पढ़ने लग जाए, किसी से भी पढ़ लें, मेरा गुमान है कि मेरा अजर आ जाएगा। आपने मेरी बात से मुतासिर होकर पढ़ा, इंशाल्लाह मेरा अजर है। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे सामने बैठे, उससे मुझे फर्क क्या पड़ना है? अगर मैं ही ना बख्शी गई तो सारी दुनिया भी पढ़ लेगी, तो मुझे उससे क्या मिलना है? तो हमेशा अपने लिए दुआ किया करें। यहाँ 3 सेकंड तक मैं खामोश रहती हूँ, आप अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह कोई खैर की ऐसी नदी बह जाए मेरी जात से, कोई परनाला ईसाई, कोई दरिया बह जाए, कुछ भी, अल्लाह दुनिया से जाने से पहले मेरे से कोई ऐसा काम ले ले कि मेरे लिए भी क्यामत के दिन अजरन गैर ममनून हो। अब इसके लिए जिस चीज की जरूरत है ना उसका जिक्र आ गया है, वह इन नकल आला खुलुक नजीम, और बेशक आप तो बड़े उमदा अखलाक पर हैं। याद रखिए बड़े काम के लिए बड़ा अखलाक, खुलुक अजीम यहाँ है। एक लफ्ज होता है खल्क तखलीक, इसी तरह एक लफ्ज होता है जब खा पे जबर और लाम पे जज़्म है खल्क, तो इससे मुराद है जिस्मानी साख्त का मोतदिल होना। देखिए हम सब कुछ चीजों से मिलके बने हैं ना, खूबसूरती आपकी नजर में क्या है? मोतदिल होना, बैलेंस्ड फेस। बस आप देखिए कुछ लोग हैं, आप उनको देखते हैं आपको बहुत प्यारे लगते हैं, भोले भाले चेहरे में फीचर्स, चेहरे पे एक नरमी है, आंखें भी झुकी हुई हैं, सॉफ्ट हैं। आप अलग अलग करके देखें ना तो उनकी कोई फीचर इतना खूबसूरत नहीं होता, यानी आंखें एक्स्ट्रॉर्डनरी मोटी नहीं होती, होंठ कोई बहुत फूलों की पत्तियों की तरह नहीं होते, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो आप कहते हैं खूबसूरत लड़की है, कहते हैं ना। इसके बरक्स आप किसी को देखते हैं तो उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है, इतनी मोटी मोटी आंखें हैं, लेकिन पूरे फेस पे देखें तो वो बस आंखें ही आंखें हैं। वो कोई एक वो जिसको आप कहना चाहिए कि बैलेंस चीज नहीं आती। तो खूबसूरती किस चीज का नाम है? एतदाल का नाम है। जब जिस्मानी तौर पे इंसान मोतदिल है तो खल्क है। अब इसको कर ले खुलुक, जो यहां है खाप पे पेश है लाम पे वजह। तो खुलुक कहते हैं आदतों में तवाजुन होना, मुतवाजन आते हैं, खुश अखलाकी। जब एक बंदा हकीकत में अपने आप को इस तरह से देखे कि जिसमें उसमें कोई मुतलवन मिजाजी ना हो, स्विंग्स ना हो उसके मूड, कभी इधर चढ़ गए कभी उधर चढ़ गए, नहीं, वो बंदा बस अपने आप को इस तरह पेश करे कि जैसा हालात जैसा वक्त है उसको सामने रखे। मसलन आप थोड़ा सा इसको अल्लाह के नबी के पहले तनाजर में देखिए, यहां इस जुमले का आना इसकी क्या जरूरत थी? जो काम आप कर रहे हैं ना, जो आपको अल्लाह ने मिशन दिया है, उसके लिए जो लीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो दो हैं, लिख ले। दो लीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं अल्लाह के चुनाव की। नंबर एक आपकी तड़प, तलब या तड़प, कि अल्लाह मुझे खपा, मुझसे कुछ ले काम, मुझे इल्म दे, मुझे जाहिल ना रखना, मैं बदलना चाहती हूँ। और दूसरी आपका इखलाक, आपका पोस्चर, आप कह सकते हैं कि आपका एटीट्यूड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो बात यहाँ आ रही है कि आपको लोग इतनी अजियतें दे रहे हैं और आप बर्दाश्त कर रहे हैं। एक कमजोर इखलाक का इंसान ये काम नहीं कर सकता, नेवर। यानी आप लिख लें कि दीन के रास्ते के तकाजे खुलुक नजीम के बगैर पूरे ही नहीं होते। इधर कहीं किल विद काइंडनेस भी करना पड़ता है, इधर कई दफा इग्नोर ग्रेसफुली करना पड़ता है, या मुंह नहीं लगना होता हर बात के, या हर चीज का दो टोक जवाब नहीं होता, यहां दो दो जमा दो नहीं होता। ये तो रास्ता ही ऐसे है कि ब्लेंडर में डाल के बस मुझे ब्लेंड कर दो और जो मर्जी करो, बस वो ये हालात आते हैं कि मुझे जमीन पे लिटाओ और लताड़ो, लेकिन तुम दीन पे आ जाओ। आला इखलाक ना हो और इखलाक के अंदर इंसान का दूसरों के साथ हर वक्त वो जिसको ईट पटक्का लगा कहते हैं ना, वो ना हो, तो इंशाल्लाह इस रास्ते से आप खैर व आफियत से गुजरेंगे। देखिए, आप बच्चे के हाथ से छुरी छुड़ाएं आसान काम है, कितनी स्ट्रेटेजी चाहिए आपको बच्चे से छुरी लेने के लिए? कभी उसको चमकारेंगे, प्यार करेंगे, टॉफी दिखाएंगे, कुछ कहेंगे, फिर छुरी छोड़ेगा। तो मुआशरे ने क्या पकड़ी हुई है, लोगों ने क्या पकड़ा हुआ है, खानदानों ने क्या पकड़ा हुआ है, ये छुरियां ही पकड़ी हुई है। नाफरमानियां, रस्में, खानदान, अल्लाह की नाफरमान। अब आपने ये छुड़ानी है तो आप जब कहेंगे जी मैं दो टोक बात करता हूं, और मैं तो भाई सीधी सीधी बात, आई एम वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा कभी खुलुक नजीम पे नहीं आ सकता। ये तो वो कहते हैं ना कि सात पर्दों में लपेट के बंदे को पेश करना पड़ता है, फिर ही कोई कबूल कर ले तो बड़ी बात है। दीन तो वैसे ही कड़वा लगता है, कहते हैं ना करेला और नीम चढ़ा। दीन की बात आप किसी को डांट रहे हैं या कह रहे हैं, और साथ आपकी जुबान और आपका टोन भी टॉन्टिंग भी है, और आप साथ आगे उसकी बात सुन भी नहीं सकते, पांव उठकाते हुए आप चक टक चले जाएंगे कि नहीं सुनते तो ना सुनो, तो फिर आपकी जिंदगी का जो पहला दिन होगा ना लोगों की खिदमत का, वही खैर से आखिरी दिन बन जाएगा। आंसू बहाते हुए आप भी आएंगे और लोग भी हो सकता है शुक्र करेंगे आपसे जान छूटी। ये काम कर ही वो बंदा सकता है जो ब्लेंडेड हो। ब्लेंडेड कौन सा? जिसने खुद को ब्लेंडर में डाल के बस क्रश कर लिया हुआ है। खुलुक नसीम, मुस्कुराना, गालियों के जवाब में मुस्कुराहटें। और कभी आप अल्लाह के नबी का इखलाक तो पढ़ें कैसा था। वो औरत जो कूड़ा फेंकती थी, आप उसके घर की सफाई कराते थे। और वो बुढ़िया की कहानी तो आपको यहां भी कई दफा सुनाई है कि वो बुढ़िया जो आपके गम से जा रही थी और सारा रास्ता आपकी बुराइयां कर रही है, आप उसकी गठड़ी सर पे रखे हुए। हम होते जमीन पे मारते, चल रख अपनी पड़, जा रहा हूं मैं, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अपनी जात को क्रश करेंगे तो खुलुक नजीम आएगा, ये लिख लें। हमारी खुश अखलाकी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मैं हूं। मुझे कहा, मुझे ओवरलुक किया, मुझे इग्नोर किया, मुझे पीछे कर दिया, मुझे लेट डाउन कर दिया, मुझे सुनाई, मैं। अब इतने जुमलों का एक इलाज इसमें से लफ्ज मैं निकाल दें। हाँ, और सुनाओ, और पीछे करो, और पीछे, मैं इस काबिल ही थी, मैं इसी काबिल हूं। हजरत अबू हुरैरा की मिसाल आपको सुनाई भी, उसको लिख लें। इधर किसी ने आके अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा आपको होते वहां दो लोग बैठे आपके खिलाफ बातें कर रहे थे। हाँ, मोते कहते ठहर जो जरा बैठो, जाने नहीं दूंगी जब तक अब तुम मेरे से 10 ना सुन लो। फिर डिस्कशंस और कन्वर्सेशंस और मैसेजिंग और टेक्सटिंग और बेचैनियां और बेताबियां नहीं। का अबू हुरैरा को तो हर वक्त 3 बातों का गम है कि जब मेरी मौत आएगी तो मैं उस वक्त क्या कर रहा हूँगा, खात्मा बिल खैर होगा कि नहीं, नामे अमाल जब मिलेंगे तो मेरा दाएं में आएगा कि बाएं में, राइट और लेफ्ट, और जब पुल सरात से गुजरा जाएंगे तो मैं खैर से गुजर जाऊंगा कि कहीं फंस जाऊंगा। कहते हैं अगर अबू हुरैरा इन मकामात पर खैरो आफिया से गुजर गया और गुजार दिया गया तो उसको जरा भी इसकी परवाह नहीं कि मुझे नहीं परवाह लोग मुझे क्या कहते हैं, हु केयर्स। हाँ, अगर मैं इन 3 में से किसी एक मुकाम पर रोक लिया गया तो दुनिया के हर इंसान तक पहुंचता है कि वह अबू हुरैरा की बुराई करे। कितना बदबख्त था कि मौत पे इसका अंजाम बुरा हुआ, इतना बुरा था कि पुल सरात पे पकड़ा गया और इसका नामे माल नहीं मिला। फिर करो मेरी बुराइयां, यकीन कर ये अखलाक हम सब के लिए क्राइटेरियन है। हम बदमिजाज कब होते हैं? देखिए ये बातें इधर कुर्सी मेज पे सजी हुई छोड़े, आप अपने आप को ले जाएं अपने घर में या जहां भी मोस्टली इंट्रेक्शन होता है बच्चों से, मियाँ से, दोस्तों से, आप लिख के उस चीजों को अपने सामने रख के देखें जो कुछ होता है। हमारा अखलाक कब खराब होता है? जब कोई हमारी जात पे हमला होता है। इवन अगर चलते चलते कोई बच्चा आपके पाँव पे भी हाथ मार जाए या आपके अंगूठे को चोट लग जाए, इतना हम बदमिजाज नहीं होते जितना कोई हमें बात कर दे, या बैठे बैठे अगर कोई बात किसी का नाम ले कैसी कह दे, तो फिर देखें हमारा मिजाज कैसे खराब होता है। तो पहली बात क्या है कि दीन के तकाजे पूरे करने के लिए आला अखलाक होना लाजमी है। ये जो आज के तो अखलाक का मेयार है, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, ये बाजारी अखलाक है। हेलो, हाय, कमिंग, मॉल्स के दरवाजों पे खड़ा हुआ है, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई दिस एंड दैट, ये बाजारी अखलाक है। वो सेल्स गर्ल्स एक छोटा सा प्रोडक्ट बेचने के लिए इतनी स्माइली हैं, तो आप जो प्रोडक्ट का लेकर निकलेंगी ना लोगों के लिए, अभी भी निकले हुए, इसके लिए आपको कितना स्माइली और प्रोफेशनल होने की जरूरत है। देखिए कोई 10 पाउंड की कॉस्मेटिक बेचने के लिए एक औरत कैसे एयरपोर्ट्स पे आपके पीछे फिरती है, ले लो, चख लो, सूंघ लो, कर लो, ट्राई कर लो, और कैसे वो अदाएं दिखाती हैं। तो वो 10 पाउंड की चीज है ना, आप ले ना ले, अच्छी निकले बुरी निकले दोनों चांसेस हैं, इस होके खत्म डील। आप जो चीज लोगों को अब देने निकल रहे हैं वो क्या है? वो 10 पाउंड की है या 10,000 पाउंड की है या 10 करोड़ पाउंड की है, जो उससे भी कीमती है। हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब करने का इरादा करते हैं ना, हिदायत देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हिदायत का जरिया बनना चाहते हैं, तो फिर हमारा इखलाक भी आला होना चाहिए। घर से निकलते हुए तैयार होकर जाएं, 100 गालियां तो पड़ेंगी, 50 लोग तो मेरा दिल तोड़ेंगे, 10 आंटियां तो जरूर ही कोई चुपता हुआ जुमला बोलेंगी, और कोई 10 लोग तो मेरे हुलिये पे 10 बातें तो करेंगे, जो सोच सकते हैं सोच जाएं, एंड पे घर आएंगे आप कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ, इसका अंदर के मेरे अंदर खोट है। लेकिन ये करना ही पड़ेगा। एक बात क्लियर हो गई है, अब चलते हैं दूसरा दर्जा। अल्लाह के नबी खुलुक नजीम पे है, तो यहां खुलुक नजीम से मुराद दीन इस्लाम है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था, तो कहने लगी कि आपने कभी कुरान नहीं पढ़ा? कहा पढ़ा है, तो फरमाया कान खुलुकुहुल कुरान, आपका इखलाक तो कुरान था। यानी खुलुक नजीम से मुराद इस्लाम, दीन और कुरान है। ये वो है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, क्योंकि जब सच्चा दीन आता है, सच्चा इस्लाम आता है, तो तहजीब, शाइस्तगी, नरमी, शफकत, अमानत, सदाकत, हिल्म, करम और दूसरी खूबियां आ जाती हैं। इसी तरह सूरत मोमिनून की शुरू की 10 आयतें, उसके बारे में भी हजरत आयशा ने यही कहा कि अल्लाह के नबी तो बस इन आयतों के मुताबिक थे। क्या पता चला कि जिसको भी इखलाक का कोई क्राइटेरियन सेट करना है ना, तो उसको कुरान और हदीस के इखलाक लेने पड़ेंगे। ये इखलाक का कोई मियार नहीं कि औरतें मर्दों से हाथ पे हाथ डाल के बात करें और अदाएं दिखाएं और कहें कि इखलाक है ना कि अब मियाँ के दोस्त आए हैं तो उनसे अच्छी बात तो करनी है। आज खुद साख्ता हमारे इखलाक के मियार है ना, ये दुरुस्त नहीं है। एक वाक्य सुनाती हूँ। बनू सवाद के एक शख्स ने हजरत आयशा से यही सवाल किया था, तो आपने फरमाया कि इन्ना कल आला खुलुक नजीम। इसने कहा अच्छा कोई वाक्या तो सुनाए, जैसे अब आपका भी दिल चाह रहा होगा कि अल्लाह के नबी के आला अखलाक की कोई दलील, कोई वाक्या तो सुना दे। तो हजरत आयशा ने कहा सुनो, एक मर्तबा मैंने भी आपके लिए खाना पकाया और हजरत हफ्सा ने भी, कौन थी दोनों, सौकने थी ना, अब मैंने भी पका लिया तो आपने भी, हजरत हफ्सा ने भी पका लिया, मैंने अपनी लौंडी से कहा, देख अगर मेरे खाने से पहले हजरत हफ्सा के हाँ का खाना आ जाए तो गिरा देना कि कहीं पेट ना भर जाए। ऐसा होता है ना, बाज दफा एक जगह रहते हो तो लोग कहते हैं कैसा हो। चुनाच उसने यही किया, यानी आप हजरत आयशा के घर में थे, उधर से हजरत हफ्सा का खाना आ गया, तो हजरत आयशा को गुस्सा लगा कि मेरा खाना जाया हो जाएगा, इनका खा लेंगे। लौंडी ने बर्तन तोड़ा। कहते हैं कि उसने जब यही किया तो बर्तन भी टूट गया। अब आप सोचिए, एक शौहर गुस्से में बिफरा होता, ये क्या किया, तुम जेलस करती हो, ये है वो है। कहती हैं कि हजूर सल्लम बिखरे हुए खाने को समेटने लगे और फरमाया, इस बर्तन के बदले साबत बर्तन तुम दो, और वल्लाही आपने इसके अलावा मुझे कुछ नहीं डांटा डिपटा। ये मुस्तद अहमद की रिवायत है। तो जो शौहर बेचारे बीवी के सारे दिन के काम के बाद रात को आके सिर्फ डांटने का ही काम करें, वो कौन से अखलाक है। ये जो हमने आज मशहूर किया हुआ है ना कि मौलवियों का अखलाक बड़ा खराब होता है, और वो घर वालों को आके जब तक पीट ना ले उनका दीन हजम ही नहीं होता, ये अल्लाह के नबी का दीन नहीं है। अल्लाह के नबी ने कभी किसी बीवी पे हाथ नहीं उठाया, कभी ऊंची नहीं बोले। खाना नहीं खाना तो नहीं खाना, ये नहीं कहा कि इसमें ये नमक ज्यादा है, कम ज्यादा, मीठा ज्यादा है। और आज भी जो दीनदार मर्द होंगे वो बेहतरीन अमल वाले होंगे, वो इतना ही बड़ा एहसान रखते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ पका तो दिया, कहाँ ये है कि अब इसमें नमक कम है, चीनी कम है, दिस एंड दैट। देखिए, दो लोगों की गवाही ही सबसे अहम होती है, बीवी या शौहर। आपकी शौहर देंगे, शौहरों की आप देंगी, या फिर घर के मुलाजिम। बीवी की गवाही तो आपने ले ली, मुलाजिम की भी सुन लीजिए। हजरत अनस जो 10 साल की उम्र में आपकी खिदमत में पेश किए गए, कहते हैं कि 10 साल तक मैं आपके साथ रहा और किसी दिन आपने मुझे उफ तक नहीं कहा। किसी करने के काम को ना करूं या ना करने के काम को कर गुजरूं। देखिए 10 साल के बच्चे, क्या आपके अपने बच्चे सारा दिन के वही करते हैं जो आप कहती हैं? नहीं, कहते हैं आप कहते और मैं ना करता, या आपने ना कहा होता और मैंने कर लिया, तो डांट डपट तो कुजा, इतना भी ना फरमाते कि ऐसा क्यों हुआ। अब आप सोचिए जरा। अच्छा जी, अब जब ये सारी बातें सुनते हैं, अभी हम दूसरा एंगल टच कर रहे हैं, तीसरा बात मैं करूंगी, थोड़ा सा आपका इसमें शरह सदर कर दूं। आपके जहनों में तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया होगा, लेकिन इस आयत को पढ़ के नेगेटिव सोच वालों के जहनों में एक क्वेश्चन आता है, अच्छा जी बड़े आले अखलाक के थे तो ये बनू कुरैज़ा पे हमला क्यों कराया था, ये जंगें क्यों लड़ी थी, ये गज़वे खंदक के मुकाबले में ये क्यों किया, और तबुक के लिए क्यों निकले। बात वैसे तो लफ्ज़ लिखिएगा दो अपने नोट्स में, अच्छा अखलाक यानी हुस्न खुल्क, और यानी खुश अखलाकी बामुकाबला हुस्न मामला। देखिए आज हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि बच्चों को कुछ ना को डांटो ना डपटो ना कुछ ना को दिसन, ये खुश अखलाकी है, तरबियत के लिए भी ना डांटो। जबकि आप नबी सल्लम के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई हैं जिसके बाद मुझे तो अल्लाह के नबी बिल्कुल अपनी आंखों के सामने यूं चलते फिरते देखते हैं कि जैसे कि किसी इंसान को होना चाहिए। आप किसी छोटी से छोटी बद तहजीबी को बर्दाश्त नहीं करते थे, डिसऑर्डर को बर्दाश्त नहीं करते थे। आपने एक जंग में देखा कि जब पड़ाव डाला है तो लोग टोलियों में बैठ गए, ऐसी अपनी पसंद के लोगों में बैठ के बातें शुरू हो गई, डिस्कशंस। तो आपने फिर एक खुतबा दिया, कहा शैतान को क्यों खुश करते हो, जब कहीं पड़ाव डालो तो सब मिलके बैठा करो। कितना अच्छा मैनर दिया कि फिर दिल मिलेंगे। उसके बाद साहबा का हाल यह था कि हदीस में आता है कि वो इतना जुड़ जुड़ के बैठते थे जब भी कहीं पड़ाव डालते कि अगर सबके ऊपर एक चादर डाल दी जाए तो डाली जा सकती थी। आप बर्दाश्त नहीं करते थे। फिर आप लोग कहते हैं अच्छा जी फिर काब बिन मालिक के साथ इतने दिन रूठे क्यों रहे, और अबुल बाबा को इतने दिन मिल्लर से क्यों नहीं उतारा। ये तरबियत का हिस्सा था। हुस्ने खुल्क जो होता है ना, ये इंसान की तबीयत का हिस्सा होता है। यहाँ एक लफ्ज की भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन रह गई, खुल्क पुराने होने को कहते हैं, पुराना होना। कपड़ा जब पुराना होता है तो क्या होता है, हम उसे यूज टू हो जाते हैं ना। नया कपड़ा कुछ भी हो थोड़ा थोड़ा तो तंग करता ही है हमें, या हम खुद ही केयरफुल रहते हैं कि नया कपड़ा पहनना हुआ। इखलाक वो चीज़ है जो आपके ऊपर पुरानी हो चुकी है, पोज नहीं देनी पड़ती। यानी इंसान ने एक घंटे का खुश इखलाक नहीं हो सकता जब घर में मेहमान आके बैठे हैं और आप उनके सामने बैठे, बेटा ये लाइए और कीजिए, और अब मेहमान के जाते ही आप कहते हैं इधर आओ जरा, आप तुम्हारी शामत लाती हूँ। आला इखलाकी क्या है कि उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, वो आपके जिस्म का हिस्सा बन चुकी थी, वो आपकी आदत है। जैसे एक सिस्टर मेरे जहन में आ जाती हैं, कराची में जब हम बहुत पहले थे, इतनी सॉफ्ट स्पोकन थी, इतनी सॉफ्ट स्पोकन थी कि जब छुट्टी करके अगले दिन उनकी मासी आती थी, तो जब वो उसको पूछती थी ना, उसी घर में दूसरी कोई सिस्टर रहती, तो वो कहती थी कि जिस तरह तुम मासी से प्यार से पूछती हो कि आप कल क्यों नहीं आई और क्या हुआ, ये सुनने के लिए तो फिर छुट्टी करने को दिल करता है। इतने प्यार से वो, उनकी तबीयत थी, सॉफ्ट थी। तो याद रखिए कि बैलेंस्ड, जंगे हुई, लड़ाइयां हुई, आपने लोगों को डांटा डिपटा, यह आपके हुस्न खुल्क का हिस्सा था। ये भी नहीं कि आप सर के मुस्कुराते ही रहें और जो मर्जी लोग कर दें। इसी तरह अल्लाह के नबी के हुस्न खुल्क होने में आपका हुस्न खलक होना भी था। अल्लाह के नबी खूबसूरत थे कैसे, चंद चीजें आपको रिवायत से पढ़ के सुना दूं। आप सबसे ज्यादा खुश खुल्क थे, आपकी हथेली से ज्यादा नरम ना तो रेशम है और ना कोई और चीज, आपके पसीने से ज्यादा खुशबू वाली चीज मैंने तो कोई ना सूंघी, ना मुश्क ना इतर। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। बुखारी में हजरत बरा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा खलीक थे। आपका कद ना तो बहुत लंबा था, ना आप पस्त कामत थे, और इसी तरह की और बातें भी हैं। हजरत आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से ना तो कभी किसी खादिम या गुलाम को मारा, ना बीवी बच्चों को, ना किसी और को। हाँ, अल्लाह की राह का जिहाद अलग चीज है। जब कभी दो कामों में आपको इख्तियार दिया जाता, तो आप उसे पसंद करते जो ज्यादा आसान होता। ये भी इखलाक का हिस्सा है। जान के मुश्किल में नहीं पड़ना चाहिए कि धूप भी और छांव भी है, तो आप कहें नहीं, धूप में फिरती हूँ ज्यादा सवाब होगा, नहीं फिर आप छांव में फिरें। हाँ, ये और बात है कि इसमें कुछ गुनाह हो तो आप इससे बहुत दूर हो जाते हैं। फिर आपके हुस्ने हुल्क में क्या था, कभी भी आपने किसी से अपना बदला नहीं लिया था, जात के लिए कभी लड़ाई नहीं की। ये और बात है कि अल्लाह की हुरमतों को तोड़ता हुआ अगर आप देखते, अल्लाह के अहकामात को जारी करने के लिए जरूर इंतकाम लेते। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आपने फरमाया, मैं बेहतरीन इखलाक और पाकीजा तरीन आदतों को पूरा करने के लिए आया हूं। यानी इखलाक का आला नमूना थे। अल्लाह हमें भी वैसे ही बना दे। एक रिवायत में आता है कि क्यामत के दिन नामे अमाल में सबसे भारी चीज जो होगी वो हुस्ने खुल्क होगी। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही कर दे। मुझे जो इस आयत के एंड पे फीलिंग मिल रही है, जो पीछे से टॉपिक चल रहा था, कि दीन के रास्ते की सोबतों को सहने के लिए दो चीजें, जाहरी तौर पर अपने किरदार और इखलाक को खूबसूरत करना और कुरान को अपने ऊपर लागू करना। बामल बनते जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इन दोनों चीजों में आला करते हुए आगे लेकर चलेगा। और याद रखिए कि मक्का वाले भी इसकी गवाही देते थे कि आप बेहतरीन हैं और आपसे कभी लोगों ने गलत चीज नहीं ली। आज के मुसलमानों की भी गवाही दूसरों से लेने की जरूरत है कि वो कैसे हैं। बाज दफा हम दूसरों को दीन की बात बताने में ही इतने बेढंगेपन का इजहार करते हैं कि दूसरों को फिर हम उसमें और ज्यादा पीछे कर देते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आज हमें नबी सल्लम के आला इखलाक पे चलने की और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद थोड़ा सा मजीद आपको बताया जा रहा है कि देखिए किस तरह से ये सारी बातें होंगी। क़यामत के दिन का थोड़ा सा नक्शा, वइन्ना लकल अजरन गैर ममनून वइन्ना लकल खुलुक नजीम फसतुबसिरु वयुबसिरून। पसंद करीब आप भी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे। क्या देख लेंगे? जब पर्दा उठेगा और क़यामत के दिन कौन आगे आया कौन पीछे गया। आज अल्लाह ताला ने हक को पर्दों में छुपाया हुआ है। क़यामत के दिन सारे पर्दे उठेंगे और उस दिन लोग देख लेंगे कि किसका अंजाम अच्छा हुआ। दूसरी तफसीर फसतुबसिरु वयुबसिरून की है जंगे बदर। आज ये मक्का वाले आपको सता रहे हैं और आप इसके जवाब में कुछ भी नहीं कह रहे, बस थोड़ा सा अरसा रह गया, फिर आप जब हिजरत करके मदीना चले जाएंगे तो वहां आप लोगों को दिखा देंगे कि बदर के मैदान में ही अल्लाह सुबहाना ताला ने इनके साथ क्या मामला किया। यानी पता ये चला कि थोड़ा सा इंतजार कर लें तो इनके साथ ये मामला हो जाएगा, जिसको फिर ये पसंद नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हकीकत है, मैं इसको इस तरह सोचती हूँ, अगर आप फौरन रिएक्शन शो ना करें ना, बद अखलाकी पे ना उतरें, किसी की बात सुन के एकदम बॉयल ना होने लगे, एक्सप्लॉयट ना कर दें, 10-15 मिनट का सब्र, अगले को खुद ही दिखाता है फसतुबसिरु वयुबसिरून कि आप हक पे थे या आप बातिल पे थे। ये घरेलू झगड़ों में भी और ये बाहर के झगड़ों में एक नादिर नुस्खा है कि रिएक्शन शो करना है तो 10 मिनट का इंतजार कर लो। शौहर को भी समझ आ जाएगा, नहीं गलती मेरी ही थी, और बीवी को भी पता चल जाएगा, नहीं ज्यादा कसूर मेरा ही था। और इसी तरह बाहर के लोगों से जब डील होती है तो हम सबको ये पता चल जाता है कि गलती पे कौन था, कौन ठीक था, कौन गलत था। लिहाजा इसकी फिक्र करके अपने आप को दुरुस्त रखो, थोड़ा सा सब्र करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए उसका अजर बहुत ज्यादा लेकर आएगा। इंशाल्लाह जब ये अखलाक होगा तो बहुत ज्यादा लोग दीन में आएंगे। जो एक इल्जाम है कि अल्लाह के नबी ने तलवार के जरिए से ही इस्लाम फैलाया, नहीं अखलाक के जरिए से। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ना फुखश को थे, ना फुखश के पास जाते, ना बाजारों में शोर व शगब करते, और बुराई का बदला कभी बुराई से नहीं देते बल्कि माफी और दरगुजर का मामला फरमाते। और एक रिवायत में आता है कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला गाली गलौज करने वाले बद जुबान से बुगज रखते हैं, तो लिहाजा ऐसी चीजों को न कहें। फिर इसी तरह आपके आला अखलाक में एक और चीज थी कि किसी चीज का आपसे कोई सवाल करता तो आप जरूर दे देते। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है हजरत जाबिर से, यानी कंजूस नहीं थे या दिल के तंग नहीं थे। लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों को बता दो कि आज इस शख्स को तुम सता रहे हो, कल जब इसके साथ मामला बदलेगा तुम खुद देख लोगे।